नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही खास पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इसके एक अहम अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अध्याय का नाम है तीसरी हिमालय यात्रा, ऋषि परंपरा का बीजारोपण। तो हुआ यूं कि मथुरा में गायत्री तपोभूमि का काम ठीक ठाक स्थापित हो गया, व्यवस्थित हो गया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव को हिमालय से तीसरा बुलावा आया, और ये सिर्फ कोई घूमने जाने का निमंत्रण नहीं था, ये उनके जीवन और जो उनका मिशन था उसमें एक बहुत बड़े, मतलब एक निर्णायक मोड़ का साफ संकेत था।
बिल्कुल, ये यात्रा उनके पूरे आध्यात्मिक अभियान के लिए एक तरह से नींव का पत्थर साबित हुई। यहाँ उन्हें जो मार्गदर्शन मिला ना, उसने भविष्य के कामों की दिशा और उसका जो विस्तार था उसको एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत असल में यहीं से हुई।
तो चलिए इसी अनुभव को और इसके पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये निर्देश थे क्या और इतने महत्वपूर्ण क्यों थे?
हाँ, तो इस तीसरी यात्रा में गुरुदेव के जो मार्गदर्शक थे, जो सत्ता थी, उन्होंने बिल्कुल साफ निर्देश दिया कि अब मथुरा का काम दूसरों को सौंप दें और खुद हरिद्वार में एक नया केंद्र स्थापित करें।
और वहां से क्या करना था?
वो जो प्राचीन, जो लुप्त हो रही ऋषि परंपराएं थीं, उन्हें फिर से जीवित करने का एक विशाल काम शुरू करना था।
उन्हें उनकी पहली हिमालय यात्रा का संकल्प भी याद दिलाया गया, जब उन्होंने वो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों के दर्शन किए थे।
हाँ हाँ, वो दिव्य आत्मा है जो बिना स्थूल शरीर के भी काम करती है, उनका दर्शन करके प्रण लिया था उन्होंने।
जी बिल्कुल, वही प्रण।
और यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ऋषियों की भूमिका को कैसे समझाया गया है। ये बताया गया कि ईश्वर अपने जो खास काम होते हैं ना, वो अक्सर इन्हीं ऋषियों के जरिए करवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कभी विश्वामित्र ने श्री राम को तैयार किया, या सांदीपनी ऋषि ने श्री कृष्ण को लोक कल्याण के कामों के लिए मार्गदर्शन दिया, तो पूज्य गुरुदेव को भी उसी महान परंपरा में एक माध्यम के तौर पर चुना गया था।
अच्छा, और स्थान भी कोई खास चुना गया था?
हाँ, स्थान भी बहुत सोच समझ कर चुना गया, हरिद्वार में सप्त सरोवर के पास। बिल्कुल वही जमीन जहाँ कभी ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री की वो महान सिद्धि प्राप्त की थी। और निर्देश ये था कि इस नए केंद्र का नाम शांति कुंज गायत्री तीर्थ रखा जाए, और यहीं से उन प्राचीन ऋषियों के जो अधूरे काम रह गए थे उनका फिर से, मतलब बीजारोपण हो।
अच्छा।
आश्वासन भी मिला कि इस काम में सिर्फ उनके गुरु ही नहीं बल्कि हिमालय के जितने भी सिद्ध ऋषि हैं उन सबका संरक्षण और सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा।
लेकिन ये काम कितना बड़ा था? क्या सिर्फ गायत्री या ध्यान तक सीमित था?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्हें किसी एक नहीं बल्कि अनेकों ऋषि परंपराओं को फिर से जीवित करने का जिम्मा सौंपा गया था। बहुत व्यापक था ये, जैसे ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में व्यास परंपरा, फिर योग और आत्म विकास के लिए पतंजलि परंपरा, और समाज में जो अनीति है, जो गलत चीजें हैं, उनके निवारण के लिए परशुराम परंपरा।
यानी सिर्फ आध्यात्मिक साधना ही नहीं थी, इसमें तो समाज सुधार भी आ गया।
बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ी चरक और याज्ञवल्क्य की परंपराएं भी थीं, संस्कारों के लिए जमदग्नि ऋषि की परंपरा, धर्म चेतना के विस्तार के लिए नारद की परंपरा, यहां तक कि विज्ञान और अनुसंधान से जुड़ी जैसे कणाद ऋषि की परंपरा, उसको भी पुनर्जीवित करने का निर्देश था। वो जो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है ना आज, उसकी परिकल्पना भी यहीं से आई।
अरे बापरे।
हाँ, संक्षेप में कहें तो जीवन का हर पहलू, मतलब ज्ञान, योग, स्वास्थ्य, समाज, विज्ञान, सबको समेटते हुए एक पूरे समाज के, व्यक्ति के समग्र उत्थान की एक रूपरेखा थी।
ये तो सचमुच में एक भागीरथ प्रयास जैसा लगता है, इतना सब कुछ एक साथ। पूज्य गुरुदेव को ये भी बताया गया कि ये मथुरा वाले काम से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, आसान नहीं होगा, रास्ते में बाधाएं आएंगी, विरोधी शक्तियां भी कोशिश करेंगी रोकने की।
जी, ये चेतावनी दी गई थी, लेकिन साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि ऋषियों का संरक्षण रहेगा, इसलिए काम रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और हाँ, एक संकेत भविष्य की चौथी यात्रा और सूक्ष्म शरीर धारण करने का भी यहीं पर मिला था उन्हें।
अच्छा, ये भी?
हाँ, तो इन स्पष्ट और इतने बड़े निर्देशों के साथ पूज्य गुरुदेव हरिद्वार लौटे, और उन्होंने सप्त ऋषियों की उस तपोभूमि में ठीक वही जगह खोज निकाली जिसका संकेत उन्हें मिला था। वो जमीन उस वक्त काफी उबड़ खाबड़ थी, दलदली सी, एकदम निर्जन। कहते हैं पहले कभी गंगा की धारा वहां से बहती थी, पर जैसी संकेत मिला गुरुदेव को वो जगह एकदम सही लगी, भाग गई।
हाँ, और पुस्तक में भी आता है कि वो जमीन उन्हें आसानी से मिल भी गई, पर वहाँ क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसका फैसला उन्हें अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि उनके जो सहयोगी थे, सलाहकार थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस वीरान सी जगह पर बनाने का आखिर प्रयोजन क्या है, किस लिए।
हाँ, ये बात सही है। ये तो पूज्य गुरुदेव की वो दूरदृष्टि और उनका जो दृढ़ संकल्प था, उसी से शांति कुंज गायत्री तीर्थ साकार हो पाया, वरना मुश्किल था।
तो कुल मिला के इस तीसरी हिमालय यात्रा का सार यही निकलता है कि ये पूज्य गुरुदेव के जीवन और उनके युग निर्माण मिशन में एक युगांतकारी पड़ाव था, एक टर्निंग पॉइंट। इसी से हरिद्वार में एक नए इतने विराट आध्यात्मिक केंद्र की नींव पड़ी और वो जो प्राचीन ऋषि ज्ञान था उसको आज के युग के लिए, आधुनिक समय के लिए पुनर्जीवित करने का एक अभूतपूर्व महाअभियान शुरू हुआ।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक ही व्यक्ति को इतनी सारी अलग अलग ऋषि परंपराओं को ज्ञान भी, योग भी, स्वास्थ्य, समाज सुधार, यहाँ तक कि विज्ञान, इन सबको एक साथ फिर से जीवित करने का कितना बड़ा, कितना वृहद दायित्व सौंपा गया है। यहाँ ये विचार मन में उठता है कि ये जो सदियों पुरानी ऋषि परंपराएं हैं, इनके कौन से तत्व, कौन से पहलू आज के हमारे इस भागदौड़ वाले जीवन और इस जटिल समाज के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो सकते हैं, सबसे कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं।
ये सचमुच एक गहरा चिंतन का विषय है, इस पर विचार तो करना ही चाहिए।